हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखलये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहे नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कमद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमलवरेण कमद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप हरे तव करकमलवरेण कमद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशव तव करकमलवरेण कमद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेण कमद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे తవ కర కమల వరేణ కమద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవ ధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కర కమల వరేణ కమద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవ ధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కర కమల వరేణ కమద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవ ధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కర కమల వరేణ కమద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవ ధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే Thank you. తవ కర కమల వరేణ కమద్భుత శృంగ దళిత హిరణ్య కశిపో తను భృంగ కేశవ ధృత నర హరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహదేవ భగవాన్ కీ జయ భక్తరాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కీ జయ నితాయ గౌర ప్రేమానందే జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ శ్రీ నరసింహ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మా ముఖ పద్మ భృంగ జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ శ్రీ నరసింహ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మా ముఖ పద్మ భృంగ జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ శ్రీ నరసింహ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మా ముఖ పద్మ భృంగ ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ భగవాన్ కీ జయ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సత్య తో యే హై కి ఆప్ సబ్ నహీ హోతే తో మై యహాన్ నహీ ఆతా ఇస్లియే ధన్యవాద్ తో ముజే ఆప్ సబ్కో దేనా హై క్యోంకి आप आए इसलिए मैं भी यहाँ आ पाया। जितने भी मंदिरों में हम आज अभी तक गए हैं इस यात्रा में, मैं भी पहली बार गया हूँ। तो और वो इसलिए कि आप सब आए, नहीं तो हम नहीं जा पाते। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप में से जिन भक्तों ने इस यात्रा में भाग लिया है, आप यहाँ पे आए हैं, आपने भी बहुत बड़ी सेवा की है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाना, बड़े आनंद से तपस्या करना, सेवा करना, कार्यक्रमों में शामिल होना, ये बहुत बड़ी सेवा है। जब भक्तों की संख्या हो जाती है, अच्छी तरह से उत्साह से आतुरता से हम शामिल होते हैं सत्संग में, तो अन्यों को भी उत्साह मिलता है। तो हर एक भक्त की उपस्थिति से अन्यों को प्रेरणा मिलती है। तो ये भी आपकी उपस्थिति मात्र ये एक बहुत बड़ी सेवा है। बहुत कुछ त्याग करना पड़ा आपको यहाँ आने के लिए, धन के रूप में, समय के रूप में, शक्ति के रूप में, बहुत असुविधा भी स्वीकार करनी पड़ी। और विशेष रूप से आप में से जो विदेश से आए हुए हैं, आपको ठंडी की आदत है, यहाँ पे तो गरम गरम सब कुछ है, फिर भी बिना शिकायत किए हुए आप बड़े आनंद से चल रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने तरह तरह की सेवाएं किए हैं। और जैसे प्रेमरस प्रभु ने बताया कि कई ऐसे भक्त होंगे जिनके नाम वो नहीं ले पाए हैं, तो आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद है। और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ ऐसे स्थानों में सब करना, क्योंकि जगह जगह जाना था, ऐसा नहीं था कि एक स्थान में रह के जाके वापस रात को आए हैं, इसलिए समस्याएं काफ़ी हो गई थी। और थोड़ी बहुत असुविधा आप सबको जगह जगह पे हुई होगी, तो क्षमा याचना करते हैं। आशा करते हैं कि अगली बार व्यवस्था में ऐसे दोष जो भी हुए हैं वो नहीं होंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अंतर्वेदी के इस मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी यहां पे उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है और धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
Hare Krishna. We thank you very much for looking after this temple very nicely. You are the custodian of our devotional heritage. So, by looking after these holy places very nicely, you are doing a great service to the whole world. And the more the amenities are for the pilgrims, the more streamlined the management becomes, the more you will get the blessings of Lord Narasimhadev. Because it is a conclusion of our shastras that seva to the devotees is more important than the seva to the Lord Himself. And when the faithful devotees come to such places, facilitating them, making arrangements for them, so that their inconvenience is minimized, so they can get maximum comfort in the course of taking the darshan and other facilities, that is a very good seva, very, very great seva. Because when people come here, they come from a long distance. They come after enduring many inconveniences, taking much expenditure. Mostly they come to a new place, they don't know the language, they don't know the place. So by making things comfortable for them and making nice arrangements where they can sit and talk and sing about the glories of the Lord is a very wonderful facility that you have made. So we pray to Lord Narasimhadev that your good self and your entire team can get more and more empowered to make nice arrangements for all the visiting pilgrims here, and may you get the blessings of Sri Lakshmi Narasimha Swami. Hare Krishna. Dhanyavad. Hare Krishna. Hare Krishna. तो कितने सारे तीर्थ स्थान है यहाँ पे, नहीं कोई कमी नहीं है। यदि एक के बाद एक के बाद एक हम देखते जाएं तो सारा जीवन निकल जाएगा, फिर भी हम उनके अंत तक नहीं पहुँचेंगे। और ऐसे कितने सारे तीर्थ स्थान हैं जो अभी लुप्त हो चुके हैं, जो अभी अप्रकट अवस्था में हैं। और ऐसे बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कई तीर्थ स्थान अप्रकट होते जाएंगे, और जितने तीर्थ स्थान प्रकट हैं वहां तो कम से कम जाके हम उनका लाभ उठा सकते हैं। इस बार एक चीज नहीं हो पाई, उससे मुझे थोड़ा खेद है, क्योंकि कुछ परिस्थिति ही ऐसी थी। थोड़ा बहुत हो गया, आप में से थोड़े भक्तों ने किया अवश्य। वो ये है कि जब भी हम ऐसी यात्रा में जाते हैं दो तीन घंटे अवश्य हम धाम की सेवा के लिए निकालते हैं। हम लोग किसी एक स्थान में जाके वहाँ सफाई करते हैं। आप सब तो जानते हैं कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गंदगी फैलाने में भारत काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है ना। तो आध्यात्मिक संस्कृति में तो है, लेकिन गंदगी यहाँ वहाँ फैलाने में भी है। तीर्थ स्थानों को भी लोगों ने छोड़ा हुआ नहीं है, जगह जगह प्लास्टिक ये फैला हुआ है, गंदगी कचरा, ये बहुत सी चीज़ें थी। भले वो कुंड हों, सरोवर हों, नदियाँ हों, हमारे पर्वत हों, मंदिर हों, मंदिर के प्रांगण हों, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ स्थान में बाहर जितने भी सड़कें हों और वन हों, जंगल, सब कुछ प्रदूषित हो गया है। तो धाम सेवा के अंतर्गत धाम की सफाई करना यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। देखेंगे, अभी भी समय है। कल मंगलगिरी जब जाएंगे तो मुझे पता नहीं वहाँ कैसी परिस्थिति होगी। यदि समय मिले तो थोड़ी बहुत वहाँ सफाई में हम सब मदद करेंगे। पिछली बार बेंगलोर के भक्तों के साथ हम गए थे हम्पी, तो पंपा सरोवर में गए तो सारे पंपा सरोवर को ऊपर से नीचे बाएं ताएं से सब भक्तों ने मिलकर साफ कर दिया। समस्या ये थी कि कचरा डालना कहाँ पे है, ये प्लास्टिक वैसे कहाँ है। तो कचरे में ले जाके हम शहर में ले गए। चलो शहर वाले आप ऐसे ही रहे तो रहो उसमें, लेकिन कम से कम तीर्थ स्थानों को तो छोड़ो, तीर्थ स्थानों को तो कम से कम साफ रखो। तो ये भी आवश्यक है, हमें भी देखना चाहिए कि हम यहाँ बिल्कुल कचरा डालें नहीं, बल्कि यहाँ सफाई करके जाएं, यहाँ की गंदगी बढ़ा के ना जाएं। देखिए, एक उसूल है, एक मूल्य है जीवन का, जो किसी भी सभ्य समाज में होना चाहिए, और वो ये है कि जितना हम अच्छा कहीं से पाते हैं या किसी से पाते हैं तो वो हमें लौटाना चाहिए, जितना पाया उससे अधिक हमें लौटाना चाहिए। बुरा नहीं, केवल अच्छा। बुरा, बुरी चीज़ किसी से मिले तो उसे लौटाना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ मिले तो लौटाना चाहिए, बुरी चीज़ मिले तो भूल जाना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ मिले तो जितना मिला उसके साथ साथ ब्याज भी देना चाहिए, भारी ब्याज, क्योंकि हमें इतना सब मिला है। तो हम ऐसे तीर्थ यात्राओं में आते हैं, धाम में आते हैं, भगवान के मंदिरों में आते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा और लाभ और शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ हमें मिलता है, तो हमें क्या देना चाहिए इसके बदले में? सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति भावना। जितने आतुरता से हम आएंगे, जितने भक्ति भाव से हम रहेंगे, जितना हमारा व्यवहार परस्पर भी और अन्यों के संग भी आदर्श रहेगा, वो सबसे पहला तरीका है जिससे कि हम हमारा ऋण चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। जब अन्य दर्शनार्थी भी देखते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले कितने संयम से चल रहे हैं, कितने भक्ति भाव से सब सेवा दर्शन आदि कर रहे हैं, तो उनको प्रेरणा होती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रचार होता है। और इसके अतिरिक्त हम आर्थिक सेवा भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा तो दे ही देते हैं। और फिर ऐसी भी कोई सेवा हो जिसमें हम सफाई आदि करें तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तो हमें यह याद रखना है कि हम धाम सेवा के लिए आए हैं, धाम के भोग के लिए नहीं आए हैं। धाम का भोग करना अर्थात जैसे एक न केवल पर्यटक के दृष्टि से आना, परंतु धाम में आना केवल अपने लिए आना, ये भूल जाना कि हम अन्य भक्तों के साथ में भी हैं, तो सबका ख्याल रखते हुए हमें आगे चलना है। तो जिस स्थान में अब हम आए हैं वो है अंतरवेदी। जब गोदावरी की चर्चा हम कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने बताया था कि राजमहेंद्री, राजमहेंद्रवरम या राजमंडरी शहर के बाद में गोदावरी नदी की धाराएं हो जाती, शाखाएं हो जाती हैं और वो अन्य स्थानों में जाके समुद्र से मिलती हैं। तो उनमें से एक धारा है वशिष्ठ गंगा। वशिष्ठ मुनि ने गोदावरी की एक शाखा को लेकर वहाँ समुद्र से जुड़वा दिया और जहाँ ये वशिष्ठ गंगा गोदावरी का संगम समुद्र से होता है तो वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो ये जो स्थान है ये स्नान करने स्थानों में से बहुत ही एक पवित्र स्थान माना जाता है। पहले भी हम बता चुके हैं कि वैसे बहुत सारे नरसिंह मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में, केवल उनमें से 32 महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सिंहाचलम, मंगलगिरी इत्यादि, उनमें से अंतरवेदी भी एक है। और यहाँ पे श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी विराजमान हैं। यहाँ पर भी श्री लक्ष्मी नरसिंह पश्चिम की ओर देखते हैं। यहाँ का गोपुरम बहुत ऊंचा है, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे अन्य बहुत सारे विग्रह हैं, जैसे जैसे आप अंदर गए आपने अवश्य देखे होंगे, कोदंडराम की मूर्ति है और अन्य भक्तों की, ऋषि मुनियों की मूर्ति है। यहाँ पे इस जगह का नाम अंतरवेदी क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने सोचा कि शायद शिव जी के प्रति मेरे कोई अपराध हुए हैं, कोई पूर्वकृत लीलाएं हुई थीं, तो उन्होंने यहाँ एक रुद्र यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से एक वेदी की स्थापना की और यहाँ विशाल यज्ञ संपन्न हुआ, इसलिए इस स्थान को अंतरवेदी कहा जाता है। उन्होंने फिर नीलकंठेश्वर की स्थापना की, भगवान शिव जी यहाँ भी विराजमान हैं। शिव जी वैसे जहाँ भी भगवान विष्णु या कृष्ण के मंदिर होते हैं अक्सर भगवान शिव जी के भी मंदिर होते हैं, क्योंकि शिव जी क्षेत्रपाल हैं, भगवान के धाम की रक्षा करते हैं, तो उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब इसका इतिहास इस प्रकार से है कि ऐसे यहाँ के स्थल पुराणों में ऐसे सब बताया जाता है कि सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा अंतरवेदी का महत्व, क्योंकि उन्होंने सुना था इस स्थान का नाम। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि इस स्थान का महत्व ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को एक बार कहा था। तो हुआ ये, हिरण्याक्ष के का एक पुत्र था जिसका नाम था रक्त विलोचना, और जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी कभी तपस्या करते भी हैं तो किसी देवता के प्रसन्नता के लिए करते हैं, ताकि उनसे कुछ ऐसे वरदान प्राप्त करें जो अच्छे वरदान नहीं होते हैं, कोई भयानक वरदान होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने कैसे वरदान मांगा या भौमासुर ने कैसे वरदान मांगा, लेकिन भगवान विष्णु के पास जो जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, देखिए इस तरह के वरदान नहीं मांगते हैं, भक्ति के वरदान मांगते हैं। देवताओं के पास जाने वाले जो असुर होते हैं अक्सर ऐसे ही गलत वरदान मांगते हैं। कामस्तैस्तर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते न्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नेतः स्वया। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे रक्त विलोचन भी तपस्या कर रहे थे, शिव जी को प्रसन्न कर रहे थे यहां तपस्या के द्वारा। वैसे देखा जाए तो शिव जी इतने प्रसन्न होते नहीं हैं इन चीजों से, परंतु वो थोड़े बहुत कर्तव्यबद्ध हैं। उनका कर्तव्य है ऐसे तामसिक लोगों का देखभाल करना। तो अंततः शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि तुमने बहुत तपस्या की है मेरे दर्शन को प्राप्त करने के लिए, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अब देखिए रक्त विलोचन ने किस तरह का वरदान चाहा। उन्होंने कहा जब मैं युद्ध करूंगा तो मैं घायल हो जाऊंगा, जब घायल हो जाऊंगा तो मेरे शरीर से खून बहेगा रक्त, जब मेरा खून नीचे गिरे जमीन पर तो मैं ये वरदान चाहता हूं कि मेरे जमीन पर खून गिरने से जितने भी मिट्टी के या बालू के रेती के कण होंगे जो भीग जाएंगे मेरे खून में, जितने कण भीग गए उतने ही असुर पैदा होने चाहिए उस मिट्टी के कण से, और हर एक असुर मेरे जितना ही शक्तिशाली और तेजस्वी होना चाहिए, और ये सारे असुरों को मेरा साथ देना चाहिए युद्ध में। अब शिवजी ने ऐसे किया होगा, पता नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं शायद, हाँ ये तो वर्णन नहीं है, ये हमारा तात्पर्य है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या हम मांगते हैं मेरे उपासक एक के बाद एक के बाद एक। देखिए शिवजी का काम कितना मुश्किल है, ऐसी ऐसी चीजें सब मांगते हैं उनके उपासक उनके पास आके। तो शिवजी ने कहा कि ऐसे तो किसी ने मुझे पहले पूछा नहीं इस तरह का वरदान, फिर भी इतनी तपस्या तुमने की है तो ठीक है मैं वरदान दे देता हूं तुम्हें। तो फिर अभी तो बहुत घमंडी हो गया रक्त विलोचन और सब जगह अत्याचार शुरू हो गया। जहां भी यज्ञ संपन्न होते थे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, वहां जाके कुछ न कुछ उत्पात करते, गायों की हत्या करते, ब्राह्मणों को परेशान करते, बहुत से पाप इस तरह से कर देते, सबके नाक में दम बन गए थे ये रक्त विलोचन। तो ऐसे चलता गया तो विश्वामित्र राजा थे, उस समय मुनि नहीं बने थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि के बीच में कुछ बातें हुई, अब तो पता है आपको, क्योंकि वशिष्ठ मुनि एक ब्राह्मण थे और विश्वामित्र मुनि जब आए थे जंगल में तो अपनी सेना के साथ में आए थे, प्यासे थे, भूखे थे, थके हुए थे। तो वशिष्ठ मुनि ने केवल अपनी एक नंदिनी गाय के द्वारा इतनी अच्छी दावत तैयार की और इतना अच्छा स्वागत विश्वामित्र राजा और उनके सैनिकों का किया कि राजा आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये ब्राह्मण के पास ऐसी शक्ति और इतना ऐश्वर्य, वो भी एक गाय के द्वारा, तो मुझे ये गाय चाहिए। देखिए, क्षत्रियों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करें, परंतु यहां उल्टा हो गया। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे गाय दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, नहीं, मैं गाय नहीं दे सकता मेरी, क्योंकि ये दूध देती है, दूध से घी आदि बनता है, मुझे यज्ञ के लिए आवश्यक है। तो मेरे धार्मिक क्रियाओं के लिए नंदिनी गाय मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो खींच के ले जाने का प्रयास कर दिया विश्वामित्र मुनि ने। तो वशिष्ठ मुनि ने अपने हुंकार मात्र से ऐसे किया और नंदिनी गाय से इतने सारे सैनिक और अस्त्र उत्पन्न हुए कि सारे विश्वामित्र मुनि की सेना भस्म हो गई। तो विश्वामित्र मुनि का अभिमान चूर चूर हो गया। वो वापस अपने महल में गए और अपने क्षत्रियता को, अपने राजा होने को धिक्कारने लगे। धिक्कार हो, क्षत्रिय होने का क्या फायदा, इतनी तपस्या करके, इतने सब कड़ी तपस्या, मेहनत करके, कसरत आदि करके और धनुर्विद्या सीख के एक जंगल में रहने वाले ब्राह्मण के सामने ये हमारी हालत हो गई। तो अभी मुझे क्षत्रिय नहीं बनना, राजा नहीं बनना है, मुझे भी एक ऋषि बनना है, मुनि बनना है और ब्रह्म ऋषि का स्तर मुझे प्राप्त करना है। तो ऐसे राजा से राज ऋषि से फिर ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं, फिर ब्रह्म ऋषि के स्तर तक, ऋषि राज ऋषि, ऋषि राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ऐसे। तो तब से विश्वामित्र मुनि राजा के मन में वशिष्ठ मुनि के प्रति कोई द्वेष भावना थी। तो विश्वामित्र मुनि ने रक्त विलोचन का उपयोग किया और कहा कि देखो, प्रेरित किया, भड़काया रक्त विलोचन को कि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दो। तो ऐसे ही कर दिया। उस समय वशिष्ठ मुनि आश्रम में नहीं थे, वो ब्रह्मलोक में गए थे। उनकी पत्नी अरुंधति वहां पर थी। तो अरुंधति देवी को बड़ा दुख हुआ, बहुत रोने लगी, अपने पति से प्रार्थना करने लगे कि देखो क्या हो गया। तो हालांकि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मलोक में थे, परंतु अपने तपोबल से वो जान पाए कि यहां पर पृथ्वी लोक पे उनके आश्रम में क्या हो चुका है। वो तुरंत लौट के आए और यहां आके उन्होंने देखा कि उनके सब 100 पुत्रों की हत्या हो गई है। तो उन्होंने भगवान नरसिंह देव से बहुत तीव्रता से प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा कीजिए और ये रक्त विलोचन जो असुर है इसको भी ठीक कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये सब जगह उत्पात करने वाला है। तो भगवान नरसिंह देव उनके सामने प्रकट हुए और वशिष्ठ मुनि ने निवेदन किया कि जब आप जाओगे और रक्त विलोचन का वध करोगे तो आपके उस कार्य को संपन्न करने के बाद कृपया आप इस स्थान में लौट के आइए ताकि यहां मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान चले गए और अपने पांचजन्य शंख को बड़े जोर से बजाया और ललकारा युद्ध में रक्त विलोचन को। रक्त विलोचन फिर आया बहुत क्रोधित होकर, भगवान को घेर के आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से रक्त विलोचन के सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया और काफी घायल भी हो गया रक्त विलोचन। उस समय जितना भी खून वहां गिरा उसके शरीर से, वो नीचे जमीन पे गिरा, जितने भी कण भीग गए रक्त विलोचन के खून से, उतने सारे तेजस्वी और शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो गए जो कि रक्त विलोचन के समान ही शक्तिशाली थे, जो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार। और ये सब आक्रमण करने लगे गरुड़ देव के ऊपर जो कि भगवान के वाहन थे, भगवान अपने वाहन पे सवार होकर आए थे।
तो गरुड़ जी तो कोई साधारण पक्षी है नहीं। गरुड़ देवी ने एक का जवाब दस में दिया, तो अपने पंखों से अपनी चोंच से इस तरह से आक्रमण किया कि वो असुर कुछ भी नहीं कर पाए। जितने भी नए नए असुर हुए थे ना, कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर फिर जब रक्त विलोचन ने देखा कि ये हो रहा है, तो उसने अपने अस्त्र गरुड़ के ऊपर फेंके, परंतु असफल रहा रक्त विलोचन, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन अस्त्रों का भी विनाश कर दिया। फिर भगवान नरसिंह देव ने उनकी माया शक्ति से कहा कि आप कोई रास्ता ढूंढो जिससे कि रक्त विलोचन का रक्त जो है खून जमीन पर नहीं गिरे, जमीन पर गिरने के पहले ही उसे उठा दो। तो उन्होंने ऐसे कर दिया। वो एक घोड़े पर सवार होकर आई माया शक्ति, और जो भी खून गिर रहा था रक्त विलोचन का युद्ध में, जमीन से के ऊपर गिरने के पहले ही वो एकत्र कर देती और उसकी एक नदी ही बन गया। रक्तकुल्या नदी का नाम है, और उस नदी को पार कोई नहीं कर सकते, देवगण भी नहीं कर सकते और असुर भी नहीं कर सकते हैं। तो खैर, इस तरह से और असुर तो पैदा नहीं हो गए, और क्योंकि माया शक्ति एक घोड़े के ऊपर सवार होकर आई थी, और घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं, अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर वो आई थी, और माया शक्ति या पार्वती देवी का नाम अम्बा है, माता, अश्वारूढ़ अम्बा उनका नाम है यहां, अश्व आरूढ़ अम्बा। तो वो माता जो देवी जो एक घोड़े के ऊपर सवार होकर यहां पर आई, तो भगवान ने तो सारे असुरों का वध कर दिया, रक्त विलोचन की भी हत्या कर दी, और फिर जिस स्थान में भगवान नरसिंह देव ने अपने चक्र को धोया समुद्र के तट पे, उस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं। तो वहां उसी स्थान में समुद्र के तट पे पांच महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। एक है वो समुद्र, दूसरा है ये सागर संगम जहां ये वशिष्ठ गोदावरी समुद्र से मिलती है, तीसरा है वशिष्ठ नदी, चौथा है रक्तकुल्या नदी, और पांचवा है चक्रतीर्थम। तो सबसे ये स्थान बहुत ही पावन माना गया है। तो वशिष्ठ ने उसके बाद भगवान नरसिंह देव लक्ष्मी नरसिंह देव की मूर्ति यहां स्थापित की, बड़े आनंद से यहां पे आराधना प्रारंभ हुई, सारे देवगण भी यहां पर आए, एक बहुत बड़ा उत्सव यहां पे मनाया गया। अब कलयुग के समय, ये तो बहुत पहले की बात थी, बहुत साल बीत गए, कलयुग आया, कलयुग में यहां पे जंगल सब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि यहां पे भगवान के विग्रह हैं। अब ये हजारों हजारों सालों की बात हम कर रहे हैं। अब हमारे जितने भी बड़े बड़े अभी नए मंदिर बन रहे हैं, अभी 200 साल बाद 400 साल बाद ये विग्रह कहाँ होंगे, अब कौन कह सकता है। आशा करते हैं कि 10,000 वर्षों तक ये हरे कृष्ण आंदोलन बना रहेगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे कि शास्त्रों में भविष्यवाणी हुई है, परंतु 10,000 वर्षों के बाद फिर घोर अंधकार कलयुग का आ जाएगा, तो उस समय इन सारे विग्रहों का क्या होगा पता नहीं। तो खैर, कलयुग की शुरुआत हुई, और उस समय एक यहां पे गाय चराने वाले व्यक्ति रहते थे जो भगवान के भक्त भी थे, जिनका नाम था केशवदास। तो जब केशवदास अपने गायों को लेकर आते थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय है जो हमेशा किसी टीले पे ऊपर जाके, छोटे से पर्वत के ऊपर जाके वहां अपनी दूध छोड़ देती थी। ये जो लीला है ये कई जगह दिखाई पड़ती है, यहाँ तिरुपति में भी हुआ, और वृंदावन में गोविंद देव के साथ में हुआ, और यहां पर भी हुआ। अब ये बेचारे केशवदास जान नहीं पाए ये गाय क्या कर रही है। केशवदास के मन में चिंता ये थी कि मेरे दूध का नुकसान हो रहा है, ये गाय जाके वहां दूध क्यों छोड़ रही है? तो उस रात को भगवान नरसिंह देव केशव दास के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि जाओ, जिस स्थान में तुम्हारी गाय दूध छोड़ रही है उस स्थान पे मंदिर बनाओ। तो अभी केशव दास को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो एक ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण ने कहा, जब ऐसा स्वप्न आता है इसका मतलब है कि वहां भगवान नरसिंह देव विराजमान हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनके लिए मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। तो सारे लोग आए यहां पर और उन्होंने भगवान नरसिंह देव के विग्रह को नीचे से उस स्थान में मिट्टी वगैरह जम गई थी, मिट्टी आदि सब निकाल के भगवान नरसिंह देव के विग्रह की स्थापना पुनः कर ली। और इस तरह से यहाँ पुनः भगवान नरसिंह देव की सेवा अर्चा इत्यादि शुरू हो गई। अब आते हैं हम लगभग 100-200 साल पहले। उस समय एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था नरेंद्र लक्ष्मी नरसिंह राव। वो व्यापारी भी थे। तो एक बार हुआ ये कि उनकी बहुत सारी जहाजें समुद्र में जा रही थीं, तो तूफान आदि में कुछ हुआ और भगवान नरसिंह देव की कृपा से उनके जहाज सारे बच गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान नरसिंह देव के लिए बहुत बढ़िया एक मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना हो गया है। तो उन्होंने अपने व्यक्तियों को भद्राचलम भेजा, श्री राम का मंदिर जहां है वहां पे उन्होंने कहा अच्छे अच्छे पेड़ मिलते हैं, उन पेड़ों को कटवा के यहां भगवान नरसिंह देव के मंदिर को बनवाने के लिए भेजना। और हर एक पेड़ के ऊपर नरसिंह देव का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने लिखवाया। और कैसे भेजते, भद्राचलम से यहां काफी दूर है, राजमंड्री से भी ये बहुत आगे है, राजमंड्री से ही 180 किलोमीटर है और फिर राजमंड्री से यहां हम तो आए ही हैं, देखते हैं कितने दूर है। तो उन्होंने सोचा था कि ये सारे जो पेड़ हैं जो कटे हुए हैं उनको हम नदी में डालेंगे, नदी के प्रवाह में बहते बहते यहां तक आ जाएंगे। परंतु बात तो सही थी, परंतु हुआ ये कि उस समय बरसात कम हुई, इसलिए पानी कम था और इसलिए वो नहीं बह सका। तो वो जो पेड़ है वहीं के वहीं रह गए। तो यहां मंदिर का निर्माण कार्य कैसे होता? तो फिर ये नरेंद्र लक्ष्मी नरसिंह जो थे, लक्ष्मी नरसिंह राव, उन्होंने समुद्र में जाके 3 दिन तपस्या की और भोजन नहीं लिया, दिन रात यहां तक खड़े थे पानी में, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई व्यवस्था वो करे कि सारे पेड़ यहां तक पहुंच जाए। 3 दिन के बाद भी जब कुछ हुआ नहीं तो भगवान को डांटने लगे, किस तरह के सिंह हो आप, कुछ काम के नहीं हो, इतना भी छोटा काम नहीं कर सकते अपने मंदिर को बनवाने के लिए, बस वहां से यहां ये लाने हैं, पेड़ लाने हैं, उसके लिए भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। तो उसी रात को तूफान आया और इतनी वर्षा आई कि गोदावरी नदी में फिर से जल भर गया और फिर जो भी वो पेड़ भद्राचल में थे जिनके ऊपर भगवान नरसिंह देव का नाम लिखा हुआ था वो सारे पेड़ बहते हुए यहां तक आ पहुंचे और फिर यहां पे उन्होंने सुंदर एक मंदिर बनवाया। तो इस तरह ये समय समय पर हम देखते हैं कि जब भी प्रथा खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है या किसी कारणवश मंदिर ढक जाता है तो कोई ना कोई भक्त आ जाते हैं जो इसकी पुनर्स्थापना करते हैं। अब इन मंदिरों का 500 साल 1000 बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन कोई भक्त आएंगे केशवदास जैसे। और प्रभुपाद जी की कृपा से आज बहुत सारे नए नए तीर्थ स्थान बन रहे हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर हैं। आज हमारे लिए लगता है कि हम हमारे मंदिर हैं ये, परंतु 500 साल बाद लोग ऐसे तीर्थ स्थान परिक्रमा में आएंगे हमारे मंदिरों में। जैसे आज हम लोग यहां आ रहे हैं ना, वैसे हमारे मंदिरों में लोग आएंगे 500 साल बाद यात्रा करने के लिए। 300 लोग, 500 लोग सब आएंगे दर्शन करने के लिए। उस समय कहेंगे बहुत प्राचीन विग्रह है। तो ऐसे हमें इसको बनाए रखना है। तो भगवान नरसिंह देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे भक्ति की रक्षा करें, हमारे भक्ति के आंदोलन की रक्षा करें, हमारे भक्तों की रक्षा करें। और जहां भी अज्ञान फैला हुआ है उस अंधकार को वो नष्ट करें, और हम सबको शक्ति प्रदान करें कि उनकी साधना, उनकी भक्ति सेवा हम ठीक से कर सकें और उनके दिव्य नामों का, संदेशों का, भक्ति का प्रचार कर सकें। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जहां तक अभी हमने ये काले वस्त्र पहन के लोगों को देखा तो हमें अयप्पा की याद आई। अभी अयप्पा है दक्षिण भारत में, केरल में वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमला, आजकल खबर में है वो, आप सब पढ़ रहे होंगे, काफी पढ़ लिया होगा आपने सबरीमलाई मंदिर के बारे में। तो इनको जब देखा, ये काले वस्त्र में जाते हैं अयप्पा, तो उनके जो उपासक होते हैं वो भी ऐसे ही काले वस्त्र पहनते हैं, 40 दिन कुछ व्रत करते हैं। क्योंकि हम आज सुबह मोहिनी अवतार के मंदिर में जाके आए थे, ऐसे वहां सबरीमला में मान्यता है कि अयप्पा मोहिनी अवतार और शिव जी के पुत्र हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत में तो ऐसे कथन नहीं है, नहीं हमने शास्त्र में ऐसे कहीं पढ़ा है, परंतु ऐसे वहां की एक मान्यता है। तो खैर, क्योंकि हम मोहिनी अवतार का दर्शन करके आए थे तो सोचा कि इस बात को कहें। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें और कहीं आगे जाना है, वहां जाके प्रसाद कहाँ लेंगे हम? यहीं लेंगे हम, यहीं पे, इसी जगह मंदिर के अंदर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी हम हरे कृष्ण, तो अभी हम सब प्रसाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।